ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीर्येत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत्सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नष्टकी। ओम अज्ञान तिमरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामयं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्री गुरुन वैष्णवांश्च श्री रूपं सागरजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगं ललिता श्री विशाखान। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाशाति देश तारिणे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाल लीलामृत प्रकरण 52। मैंने अपने हिस्से का कार्य पूरा कर दिया है। यहां से श्रील प्रभुपाद ने यहीं से है ना। श्रील प्रभुपाद के पश्चिम जाने के विषय में दो बातें अनिश्चय पैदा कर रही थी। एक तो संयुक्त राज्य के लिए पासपोर्ट तथा अधिवास कार्ड प्राप्त करने की औपचारिकताओं में से वे संबंधित थी। दूसरी बात स्वयं श्रील प्रभुपाद के मन की हिचक थी जो ज्योतिषी की रिपोर्टों पर आधारित थी। निसंदेह उनका स्वास्थ्य प्रधान कारण था, किंतु कभी कभी वे हर बात की अवहेलना करके अपने सेवकों को जैसे भी हो उन्हें लंदन ले जाने के लिए कहने को तैयार से लगते थे। वे अभिराम को कुछ उलझने सुलझाने के लिए पहले ही कलकत्ता भेज चुके थे। उनका अमेरिका अधिवास का ग्रीन कार्ड समयातीत हो चुका था और दिल्ली में स्थित अमेरिकी दूतावास चाहता था कि वे फिर साक्षात्कार के लिए आएं। इस बीच प्रभुपाद का पासपोर्ट और एक अस्थाई अनुमति पत्र तैयार किए जा रहे थे। इसमें केवल 4-5 दिन लगने वाले थे। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर जो प्रभुपाद को देखने कभी कभी आया करता था, उसने कहा कि उन्हें एक सप्ताह के करीब प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए। यह आज का पहला पैराग्राफ है। इसमें इसके माध्यम से हम कुछ और समझने का प्रयास करेंगे। प्रभुपाद अमेरिका जाना चाहते हैं पर हिचक भी है, दोनों चीजें। हिचक थी ज्योतिष की रिपोर्ट पे, अगर हम इस हिस्से पे न जाएं और उनके अमेरिका जाने की बात करें तो क्या लाइन लिखी हुई है यहां पर कि एक तो पासपोर्ट चाहिए और एक वहां का ग्रीन कार्ड। ग्रीन कार्ड है तो वीजा मिलेगा, अगर ग्रीन कार्ड नहीं है तो वीजा के लिए, जैसे कह रहे हैं कि ग्रीन कार्ड की डेट एक्सपायर हो गई है, अब उनका एक इंटरव्यू होना है, साक्षात्कार होना है, उनको जाना पड़ेगा एम्बेसी में और वहां जाके उनको जो है अपनी दोबारा से जाने की कंफर्मेशन देनी पड़ेगी। अब हम इसको जो है अपने लोगों पे अप्लाई करते हैं। हम लोग आ रहे हैं मंदिर के अंदर, भागवतम सुन रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भक्ति वृक्ष जा रहे हैं, बहुत सारी जगह पे हम लोग जो है सेवाएं कर रहे हैं। उसका लक्ष्य क्या है, क्या लक्ष्य है हमारा, क्या चाहते हैं हम? बाहर तो बड़े अच्छे थे, मौज थी, मेला था, एंजॉयमेंट थी, मॉल थे, सड़कें थी, ये थी, गाड़ियां थी, क्या क्या नहीं था। पर यहां पे आने के बाद हमें अपने जीवन के लक्ष्य का पता लगा, तो हमारा लक्ष्य क्या है, किस लक्ष्य को लेके आप मंदिर में आए? किसने बोला बैक टू गॉड एट? हाथ खड़ा करें जरा। माता जी कहती हैं, रोहिणी माता कह रही हैं कि हमें लक्ष्य है, लक्ष्य भगवान के धाम जाना है, परंतु पहला लक्ष्य यह है कि दोबारा से दुख नहीं भोगने हैं। पहला लक्ष्य क्या है? दुखों से छुटकारा। लक्ष्य तो यही है ना, दुखों से छुटकारे का अर्थ यह है कि सुख की प्राप्ति। और सुख कहां है? भगवान क्या कहते हैं? कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम। पदम गच्छन्ति अनामयम अर्थात जो मेरे धाम में आ जाता है उसको कोई कष्ट नहीं होता। आमय, आमय का अर्थ होता है कष्ट, कुंठा, तकलीफ, परेशानियां, दुख। अनामयम का मतलब है मेरा वो स्थान है जहां पर कोई कुंठा नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई दुख नहीं है, अर्थात सुख ही सुख है। तो पहला लक्ष्य क्या है हमारा कि हम दुखों से छुटकारा पा लें। अब दुखों से छुटकारा पाने का मतलब यह है कि सबसे पहले समझना होगा कि दुख क्या है, दुख क्या है। तो भगवान बता रहे हैं, हा ब्रह्म भुवना लोका पुनर्वर्तनु अर्जुना माम उपेत्या तो कौन तय पुनर्जन्मना विद्यते, कि इस जगत में उच्चतम लोक ब्रह्मा जी का, निम्नतम लोक पाताल, सारे के सारे लोग दुखों के घर हैं। और दुख क्या है? जन्म और मृत्यु का चक्र। किंतु कुंती पुत्र जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। पुनर्जन्म की बात इसलिए करी कि जन्म होगा तो मृत्यु आएगी, जन्म होगा तो बुढ़ापा आएगा, जन्म होगा तो बीमारी आएगी। तो सबसे दुखदायक क्या है? जन्म होना। तो भगवान ने स्पष्ट कर दिया। अब हम जो है भगवान के धाम जाना चाहते हैं अल्टीमेटली, क्योंकि हम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं। प्रथम लक्ष्य है दुखों से छुटकारा, और उसका साधन क्या है? दुखों से छुटकारा परमानेंटली मिल जाए, उसका साधन क्या है? भगवान के धाम में चले जाना, अर्थात पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम से छुटकारा हो जाना। अब भगवान के धाम जाने का तरीका क्या है? तरीका आप कहेंगे चैंटिंग करना, वेरी गुड। भगवान को भोग लगाना, वेरी गुड। मंदिर में सेवा करना, वेरी गुड। मंदिर बनवाने में सहयोग करना, वेरी गुड। बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, वेरी गुड। प्रचार करना, वेरी गुड। ये सारे साधन हैं, पर इसको एक एक लाइन में पिरो दिया जाए, एक लाइन में, सारी की सारी चीजों को एक लाइन में पिरो दिया जाए, एक लाइन में। जब आपके पास भगवान के धाम जाने की तीव्र उत्कंठा होगी, स्ट्रॉन्ग डिजायर, उसके सामने सारी आपको डिजायर्स जो हैं छोटी लगेंगी। तीव्र उत्कंठा, अब जाना है। बच्चा कहता है डैडी आईआईटी में एडमिशन लेना है, आईआईएम एमबीए करने के लिए जाना है, उसकी तीव्र उत्कंठा है। होती है कि नहीं होती? डॉक्टर बनना है, तीव्र उत्कंठा है। पिता कहता है बेटा अगर तुम एमबीए करना चाहते हो आईएमएम से, आईआईटी में ग्रेजुएशन करना चाहते हो अच्छी आईआईटी के कॉलेज से, तुम डॉक्टर बनना चाहते हो नीट का एग्जाम पास करने के बाद अच्छे नंबर लेने के लिए, तो मेहनत करनी पड़ेगी। क्या बोलेगा? क्या चाहिए? हार्डवर्क। बेटा कहता है रेडी मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, कुछ भी, पर मुझे आईआईटी में एडमिशन लेना है, मुझे एमबीए आईआईएम से करना है, मुझे नीट पास करके डॉक्टरी करनी है, एम से करनी है। उसने प्लान कर लिया, उसके लिए कुछ भी हार्डवर्क करने को तैयार है। जब आपके मन में उत्कंठा होगी, तीव्र उत्कंठा होगी, यस मुझे भगवान के धाम जाना है, उसके लिए मैं कुछ भी मेहनत करने को तैयार हूं। आप कहते हो भाई भगवान में श्रद्धा रखनी होगी, रखूंगा, तरीका बताएं। आप कहते हो साधु संग करना होगा, करूंगा, तरीका बताएं। आप कहते हैं भजन क्रिया करनी होगी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साखी आत्मनिवेदनम, मैं सारी की सारी विधियों में अपने आप को लगाने के लिए तैयार हूं। अनर्थ निवृत्ति करनी होगी, करने को तैयार हूं। भगवान में निष्ठा रखनी होगी, रखने को तैयार हूं। रुचि के लिए तैयार हूं, आसक्ति के लिए तैयार हूं। भगवान के प्रति भाव है और संसार के प्रति भाव नहीं है, किसी और के प्रति भाव नहीं, केवल भगवान के प्रति भाव है, तो कृष्ण प्रेम मिलेगा, भगवान के धाम जाओगे। अर्थात उत्कंठा के अंदर ही सारी बातें आ गई, सब बातें, सारी बातें आ गई उसके अंदर। आपने कर लिया, अब आपको क्या चाहिए? यहां पे एप्लीकेशन लगा दी है वीजा के लिए, आप अमेरिका जाना चाहते हो, आपके पास पासपोर्ट है, आपने वीजा की एप्लीकेशन लगा दी है, साक्षात्कार हो गया है, वीजा रिजेक्ट हो गया, आप नहीं जा सकते। आपने अपने मित्र से बात करी, कैसे जाया जाएगा, कैसे जाया जाएगा, मेरा तो वीजा रिजेक्ट हो गया है, मैं कैसे जाऊंगा? तो तीव्र उत्कंठा के बाद दूसरी चीज यह है भगवान की कृपा। सैंक्शनिंग अथॉरिटी वही है, अपने घर में आने की परमिशन उन्होंने देनी है, पर वो कहते हैं कि तुमने वीजा के लिए एप्लीकेशन तो लगाई है पर एप्लीकेशन तुम्हारी इनकम्प्लीट, क्योंकि हमने अपना कार्य जो है सब पढ़ के अपनी मर्जी से किया। अगर स्टूडेंट किताबें बाजार में अवेलेबल हैं, आज की डेट में बुक्स इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, अगर उनको पढ़ के पास हो जाता तो स्कूल कॉलेज जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पड़ती आवश्यकता, क्यों जाता है वो? आप इतने इतने लाख रुपए फीस देके प्रेसिडियम में भर्ती करा दो जी, हंसराज में भर्ती करा दो जी, मॉडर्न में भर्ती करा दो जी, डीपीएस में भर्ती करा दो जी, कॉलेज में जाते हैं, हैवी डोनेशन देते हैं, जाके एडमिट होते हैं, इतनी मेहनत करते हैं जाके एडमिट होते हैं, क्या आवश्यकता है? किताबें तो बाजार में अवेलेबल हैं, उनको पढ़ो और पास हो जाओ, फिर भी आप जाते हो। भगवान की कृपा किसके माध्यम से हो रही है? यहां पर जो है, जो आपको उसने वीजा देना है उसकी ऑथोराइजेशन है कॉन्सुलेट के पास, एम्बेसडर के पास, या उसके रिप्रेजेंटेटिव जो वीजा ऑफिसर है उसके पास। तो अगर यहां पर जो है भगवान के धाम जाने का वीजा लेना है, तो आपने कहा जी मैंने तो एप्लीकेशन लगाई थी, मेरे को तो वीजा मिला नहीं, मुझे तो वीजा मिला नहीं। मैंने कहा वीजा चाहिए? बोला हाँ चाहिए। एक एजेंट को पकड़ो। एजेंट ने देखा, देखो ये आपकी गलती थी, ये दो गलतियां निकली हैं इसलिए वीजा रिजेक्ट हो गया, ये तीन गलतियां थी इसलिए वीजा रिजेक्ट हो गया, ये चार गलतियां थी इसलिए वीजा रिजेक्ट हो गया। आप एजेंट से कहते हो सर ठीक कराओ इसे, मुझे अमेरिका का वीजा मिलना चाहिए, तो वो करेक्शंस लगाता। भगवान कहते हैं कि तुम्हें मेरे धाम आना है, तुमने एप्लीकेशन लगाई है, वो एप्लीकेशन ठीक नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक है, कहीं ना कहीं गलती है, कहीं ना कहीं उसमें कष्ट है, तो कष्ट को कौन दूर करेगा? स्कूल जाके ज्ञान कौन देता है? गुरु। यहां कष्ट कौन दूर करेगा? एजेंट कौन है? गुरु। गुरु आपको बताएगा कि आपकी वीजा की एप्लीकेशन में क्या गलतियां थी, अर्थात भगवान की सेवा में, भगवान के धाम जाने में क्या कमी रह गई। वो कमियां आपको जब गुरु के माध्यम से मालूम पड़ेंगी, आप उसको जो है ठीक करेंगे, उसके ऊपर चलने का प्रयास करेंगे, तो आपका भगवान के धाम जाना निश्चित हो जाएगा। तो यहां एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं कि आप देखिए, प्रभुपाद को भी साक्षात्कार देना पड़ा। अब मर्जी उस वीजा ऑफिसर की है, उनको वीजा देता है कि नहीं देता, डेफिनेट नहीं है, पर उनके क्रेडेंशियल्स देखते हुए, उनका पास्ट एक्सपीरियंस देखते हुए, उनकी पास्ट यूएसए में एक्टिविटीज देखते हुए, पासपोर्ट ऑफिसर मजबूर हो गया कि इनको वीजा दे दिया जाए। H1 एक्सपायर कर गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोबारा मिल जाएगा जाके, और सबसे पहले वहां पहुंचना तो जरूरी है ना, पहुंच तो जाएंगे। तो यहां आ रही है बात कि किंतु प्रभुपाद ने पाया कि एक बार बाहर जाने का मन बनाना और ना जाना और फिर मन बनाना, यह केवल थकाने वाली प्रक्रिया थी। प्रभुपाद बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, डामाडोल नहीं होना है, हां ना, यस नो, करूं ना करूं, क्या करूं, ये कह रहे हैं कि ये इस तरह सोचना जो है थकाने वाली प्रक्रिया है। गाइडेंस लीजिए और उस मार्ग पे चल दीजिए, फिर सोचना नहीं है, फिर ना नुकर नहीं है। एक बात मुझे बताइए, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है? हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है? क्या संबंध है? वो स्वामी है, हम सेवक है, यही संबंध है ना। मैंने जब सर्विस स्टार्ट करी, 1976 की बात है, मैं मेडिकल कॉलेज से पास करके निकला, तो मेरी सरकारी नौकरी लग गई। तो मेरे फादर ने मुझे एक ही गाइडेंस दिया, कहते बेटा मैंने 40 साल नौकरी करी है, नौकरी करनी है तो नखरा नहीं करना। नखरा समझते हैं आप? नखरा नहीं नहीं, ये मेरे मन की बात नहीं है, ये मेरे को सूट नहीं कर रहा, ये कुछ और करते हैं, नहीं। मीन्स जो बॉस ने कहा है उसको फॉलो करना है, नखरे नहीं करने। हम भगवान के सेवक हैं, हमको जो अथॉरिटी है किसी भी सेवा के लिए, नेटिव वर्शिप की अथॉरिटी अलग है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन की अथॉरिटी अलग है, टेंपल में कीर्तन की अथॉरिटी अलग है, ठीक है नहीं? तो हमें उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए या ना नुकर करने चाहिए, नखरा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हम करते हैं कि नहीं करते हैं, या ईमानदारी से बोलना या ईमानदारी चाहिए, नहीं प्रभु जी कुछ और सेवा दे दो, मेरे को सूट नहीं कर रहे, कुछ और दे दो। भक्ति रसामृत सिंधु में स्पष्ट लिखा है उत्तमा भक्ति क्या है। उत्तमा भक्ति, तो उत्तमा भक्ति का लक्षण बताया है कि अगर भगवान की सेवा में लगे हुए आपके प्राणों पे बन आती है, लाइफ इज इन डेंजर, तो आपको अपने प्राणों को बचाने की भी कामना भगवान से नहीं करनी है। हमारे तो प्राणों पे नहीं बनती, तब भी हम कहते हैं प्रभु जी पार्किंग कौन करेगा जन्माष्टमी पे, अरे मंदिर के हॉल में सेवा दो आप, यहां मजा आएगा। हम लोग डिजायरस हो जाते हैं। तो यहां ये है कि आपको कार्य करना है, उसमें नानुकर नहीं है, डिसीजन डन एंड डन। अब यहां क्या कह रहे हैं, सबसे नया यह समाचार सुनकर संयुक्त राज्य दूतावास का आग्रह साक्षात्कार पर था, जिसके लिए उनका जाना शारीरिक कारणों से लगभग असंभव था। प्रभुपाद बेचैन है उठे, अपने बिस्तर पर घंटों पड़े रहने के बाद उन्होंने अंत में तमाल कृष्ण को बुलाया और कहा मैं जाना चाहता हूं। सोच विचार नहीं है, डिसीजन में ढुलमुल नहीं है कोई भी कार्य, सिंगल लाइन मैं जाना चाहता हूं। क्या आप मुझे ले जाने की व्यवस्था कर सकते हैं, किसी तरह मुझे ले चलिए, यहां मुझे कोई अच्छा परिणाम नजर नहीं आता है, मेरे मन में बड़ा मनोवैज्ञानिक उत्साह है, आप डरे नहीं, मुझे कोई डर नहीं है, मैं चाहे यहां मंदिर में मरूं या वहां, बैकुंठ सर्वत्र है। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, बैकुंठ, जहां कुंठा नहीं है, जहां कष्ट नहीं है, मतलब अनामयम, बैकुंठ जहां कुंठा नहीं। श्रीमद् भागवतम के अंदर 10वें स्कंद में चर्चा आती है और फिर पद्म पुराण में चर्चा आती है। पद्म पुराण में एक जगह चर्चा आती है जहां भगवान कृष्ण जो है शिवजी से बात कर रहे हैं, शिवजी उनके दर्शनों के लिए आए हैं, बहुत लंबा प्रकरण है, मैं सिर्फ दो ही लाइनें बताता हूं इसमें से। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये मेरी प्रिया राधा जी हैं, मैं इनके संग इस जगह विचरण करता हूं वृंदावन में, मैं इनके संग वृंदावन में विचरण करता हूं, लीलाएं करता हूं, मैं इस स्थान को छोड़कर कभी नहीं जाता, मैं वृंदावन को छोड़कर कहीं नहीं जाता। फिर पद्म पुराण में दूसरी जगह चर्चा आती है, यहां भगवान कहते हैं ना मैं योगियों के हृदय में रहता हूं ना बैकुंठ में, ना मैं योगियों के हृदय में रहता हूं ना बैकुंठ में, मैं वहां रहता हूं जहां भक्तगण मेरी चर्चा करते हैं, मैं वहां रहता हूं जहां भक्तगण मेरी चर्चा करते हैं। अलजबरा पढ़ते हैं, कितने लोग पढ़ते हैं अलजबरा, किन्होंने पढ़ा है, कितने लोगों ने पढ़ा? ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, तो सी इज इक्वल टू, ठीक है, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी एंड सी इज इक्वल टू ए। भगवान कहते हैं कि मैं वृंदावन को छोड़कर कहीं नहीं जाता, एक स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है, जहां भक्तगण चर्चा करते हैं वहां मैं उपस्थित रहता हूं। इसका मतलब है जहां भी भक्तगण चर्चा करते हैं वहां भगवान हैं, और जहां भगवान है चूंकि वृंदावन छोड़ के नहीं जाते तो वो स्थान वृंदावन। इसलिए प्रभुपाद ने कहा वैकुंठ सब जगह है, मैं यहां मरूं या मंदिर में मरूं वैकुंठ सर्वत्र है। क्यों? मैं जहां रहूंगा वहां भगवत चर्चा करूंगा, और तो कुछ करूंगा नहीं, संसारिक बातें तो मैं करता नहीं। प्रभुपाद क्या बातें करते, संसारिक बातें करते क्या? हाँ, आज कौन सा सीरियल चल रहा है, आज कौन सी फिल्म आई है, आज कौन सा नया फोन आया है, क्या चर्चा होती है? जहां मिलते हैं दो भक्त वहां कृष्ण कथा होती है, कृष्ण की चर्चा होती है, तो भगवान वहां पर उपस्थित हैं, अर्थात वो हर स्थान वैकुंठ है। अगर आप कहीं किसी के घर में भक्ति वृक्ष की क्लास कर रहे हैं, भगवान की चर्चा हो रही है, तो वो स्थान वृंदावन है, वो सीमापुरी नहीं है, वो भजनपुरा नहीं है, वो कीर्ति नगर नहीं है, वो नारायणा नहीं है, रजौरी गार्डन नहीं है, उस वक्त वो स्थान वृंदावन के माफिक है। तो यहां प्रभुपाद कह रहे हैं कि मैं चाहे मंदिर में यहां मरूं या वहां अमेरिका में, वैकुंठ सर्वत्र है, हर जगह वैकुंठ है। शर्त केवल एक ही है कि आपको हर जगह भगवान की चर्चा करनी होगी, ओनली वन कंडीशन। एक स्टार लगा हुआ है, दूसरा स्टार नहीं है। तमाल कृष्ण ने चाहा कि वे उन कुछ जीबीसी के लोगों से परामर्श कर लें जो वहां मौजूद थे, किंतु जब भक्त जन प्रभुपाद के कमरे में तीसरे प्रहर आए तो प्रभुपाद ने कहा कोई परामर्श नहीं, कोई परामर्श नहीं, कोई राय नहीं करनी किसी से, मैंने निश्चय कर लिया है जाने का, जाने की व्यवस्था तुरंत की जाए। दिस इज कॉल्ड डिसीजन, डिसीजिव, अटल है अपने डिसीजन पे कि ये करना ही करना है और कोई रास्ता नहीं है। किंतु फिर कुछ गड़बड़ी हो गई। डॉक्टर ने श्रील प्रभुपाद से एक सप्ताह और प्रतीक्षा करने को कहा, और प्रभुपाद भी संयुक्त राज्य के लिए ग्रीन कार्ड प्राप्त किए बिना भारत छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने बलवंत को कोशिश करने और ग्रीन कार्ड प्राप्त करने के लिए कलकत्ता भेजा। इतने सारे मामलों के अनिश्चय में लटके होने के कारण प्रभुपाद निश्चित नहीं कर पा रहे थे कि इंग्लैंड तुरंत जाएं या प्रतीक्षा करें। प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो प्रॉब्लम की वजह से डिसीजन लेने में दिक्कत आ रही है। या तो जहाज में बैठ के वहां एयरपोर्ट से वापस कर दिया जाएगा, आपके पास तो एंट्री वीजा है नहीं, आप ग्रीन कार्ड नहीं है, वहां रह नहीं सकते। तो इसलिए कहा है कि जो निश्चय थोड़ा बहुत डामाडोल हुआ है वो हुआ है कि जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे वो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है, वो कारण बना। श्री प्रभुपाद ने कहा मेरी योजना अमेरिका में रहने की है, जब तक मैं भागवत पूरी नहीं कर लूं मैं वापस नहीं जाऊंगा। मैं वहां लोगों को संगठित करना चाहता हूं, अमेरिकी बालक इतने अच्छे हैं, यदि मैं वहां हर चीज को मजबूत बना दूं तो आंदोलन स्थायी हो जाएगा। चलिए वहां अभी चलें, डॉक्टर कहेगा तो दवा चार दिन में काम करेगी, और तब कहेगा थोड़ी और प्रतीक्षा करो, उसका तरीका यही है। अमेरिकी बालक बहुत अच्छे हैं, क्यों क्यों अच्छे हैं बताएं, बोलिए, जोर से बोलिए। बनारस गया कोई? प्रभु जी गए बनारस की एक संगीत पाठशाला में। बनारस में बहुत सारे यूरोपियन अमेरिकन घूमते रहते हैं, बहुत सारे लोग। वृंदावन में बहुत बहुत यूरोपियंस घूमते हैं, अमेरिकन घूमते हैं। तो एक संगीत पाठशाला में जो है एक व्यक्ति गया, हिंदुस्तानी इंडियन, कि संगीत सिखा दीजिए। उसने कहा भी ऐसा है, एक घंटे की क्लास मिलेगी हफ्ते में 3 बार और मासिक शुल्क रहेगा आपका 1000 रुपया। बोले ठीक है, आ गए। तुरंत उसके बाद एक अमेरिकन गया, अमेरिकन ने बात कहा, जी मुझे संगीत सिखा दीजिए। उसने कहा भाई तुम्हें कुछ आता है? कहता जी मुझे कुछ नहीं आता। और जो इंडियन था उससे पूछा तो उसने कहा मुझे सारे गामा आता है, मुझे 2-3 फिल्मी गाने भी आते हैं, 2-3 मुझे भजन भी आते हैं, इस तरह करके उसने जो 2-3 शास्त्रीय संगीत भी बजा लेता हूँ, उसने अपना ज्ञान वगारा। अमेरिकन कहता मुझे तो कुछ आता नहीं। ने कहा तुम्हारा जो है हफ्ते में 3 दिन क्लास होगी, 1 घंटे की फीस लगेगी 500 रुपया। वहां पहुंच गए, इंडियन जो था बाहर बैठा था, उसने कहा कितने पैसे मांगे? बोला 500 रुपया। बोला मुझसे 1000 मांगा, तुम गोरी चमड़ी वाले इसलिए कम मांग रहा है? गोरी चमड़ी वाले से पैसे कम मांग रहा और हम काली चमड़ी वाले हमसे पैसे 1000 रुपया मांग रहा है। वो लड़ने पहुंच गया। कहने का आप हमारे देश के संगीताचार्य हो, हमारे देश के रहने वाले हो, अपने देश के लोगों से भेदभाव करते हो, लड़ना शुरू कर दिया। उसने कहा देखो ऐसा है कि तुमके गाने भी आते हैं, भजन भी आते हैं, एक दो और चीजें भी आती हैं, तो मेरे को तो स्लेट साफ चाहिए। 500 रुपया तुम्हारी स्लेट साफ करने के हैं, फीस 500 रुपया, लिखने की फीस तो 500 रुपया ही है, 500 रुपया चाहिए तुम्हारी स्लेट साफ करने का। वो जो गोरी चमड़ी वाला है उसको कुछ आता ही नहीं, जो लिखूंगा लिख देगा। तो हम अगर देखें, ध्यान दीजिएगा, अमेरिकी लोगों के पास सिर्फ क्रिश्चियनिटी थी, सिर्फ क्रिश्चियनिटी, बाइबल का विश्वास करते थे और तो कुछ जानते नहीं थे। प्रभुपाद ने जो लिखा वो एक्सेप्ट होता गया, जो लिखा वो अंकित हो गया। हिंदुस्तान के अंदर आप प्रचार करने जाते हो, अजी मैं तो गुरुजी पे जाता हूं, अजी मैं तो वहां देवी के यहां जाता हूं, अजी मैं तो वहां जाता हूं, अजी मैं तो वहां जाता हूं। वो 50 जगह जा रहे हैं लोग, 50 वैरायटी की जगह जा रहे हैं, 100 वैरायटी की जगह जा रहे हैं, उनमें से किसी को खींच के कृष्ण भक्ति में लाना आपको साधारण लगता है कि मुश्किल लगता? साधारण लगता क्या? अगर साधारण होता तो यहां क्लास के अंदर बैठने की जगह ना मिलती, बड़ा मुश्किल है। उनके जो भ्रांतियां हैं, उनके मन में जो विश्वास टिके हुए हैं सालों साल, मैं बताता हूं एग्जांपल। मेरे घर में प्रोग्राम चलता था, मेरी कजन आती थी प्रोग्राम में, वक्ता आए, उन्होंने शिवजी को नकार दिया एकदम, उन्होंने आना बंद कर दिया, स्टॉप्ड। और मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा दीदी तुम आ नहीं रही, आपके यहां तो शिवजी को निकाल दिया है बिल्कुल, हम तो बचपन से शिवजी की भक्ति करते आ रहे हैं, हम शिवजी को छोड़कर कृष्ण भक्ति में कैसे आ जाए? हाँ हम आते हैं, आप बुलाते हो इसलिए आते हैं, अच्छा लगता है सुनने में, अच्छा लगता है, गीता हमें आता नहीं थी, पढ़ने में सुनने में अच्छी लगती है, परंतु इसका मतलब थोड़ा कि हम शिवजी को छोड़ दें, कितना कठिन है। तो इसलिए कहा है कि अमेरिकी बालक बड़े अच्छे हैं, उन पे जो लिखेंगे वो लिख दिया जाएगा, अंकित हो जाएगा उनके हृदय पे, एंड दे विल स्टार्ट फॉलोइंग। आगे कहते हैं, अंत में कलकत्ता से अभिराम की रिपोर्ट मिली कि पासपोर्ट प्राप्त हो चुका था, अमेरिका के कलकत्ता स्थित वाणिज्य दूतावास का कहना था कि वो ग्रीन कार्ड प्राप्त करने में मदद करेगा। तमाल कृष्ण दौड़ते हुए ऊपर गए, श्री प्रभुपाद से बोले, बहुत अच्छा समाचार आया है। श्री प्रभुपाद बिस्तर में लेटे थे, किंतु जब उन्होंने समाचार सुना तो वे धीरे धीरे तालियां बजाने लगे और बोले, मुझे अच्छे समाचार देते रहो, इसी तरह जीवित रखो। वे लंदन के विषय में सोचने लगे। उन्होंने कहा, वहां के राधा कृष्ण के अर्च विग्रह कितने अच्छे हैं, नाम है राधा लंदनेश्वर, कितना निरीह बालक है वह। भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं, कितना निरीह बालक है, मतलब बहुत ही कोमल हृदय, कमजोर, दुनियादारी से दूर, कुछ अता पता कुछ नहीं, बहुत ही शांत स्वभाव, कोमल स्वभाव का। तमाल कृष्ण ने प्रभुपाद को याद कराया कि उन लोगों ने नर्च विग्रह को कैसे प्राप्त किया था। श्री प्रभुपाद ने कहा, हाँ, सब कुछ अप्रत्याशित ढंग से हुआ था, मैं बिल्कुल निराश था, किंतु कृष्ण बोले, मैं यहाँ हूँ, मुझे ले चलो। श्री प्रभुपाद को भक्ति वेदांत मैनर की याद आई। उन्होंने कहा, मेरे कमरे के सामने का मैदान कितना शानदार है, मैं समझता हूँ अच्छा समय आने वाला है, मधु द्विष आ गया है, गौर सुंदर आ गया है, खोया हुआ लड़का वापस आ गया है, ये अच्छे लक्षण हैं। प्रभुपाद इस तरह बोलते रहने से उनकी आवाज, जो पहले धीमी और कमजोर लगती थी, जोरदार मालूम होने लगी। अपने कुछ शिष्यों के पतन का निर्देश करते हुए उन्होंने कहा, गलती हो सकती है, किंतु उसे ठीक भी किया जा सकता है, गलतियां ना हो इस विषय में बहुत सावधान रहना चाहिए। जो थोड़ी सी भी सेवा करता है, कृष्ण उसे कभी नहीं भूलते। तमाल कृष्ण ने कहा, आप भी नहीं भूलते प्रभुपाद, जो थोड़ी सी भी सेवा करता है भगवान की, आपके माध्यम से, आप भी नहीं भूलते। मैं कैसे भूल सकता हूं, आप सबने भगवान चैतन्य और मेरे गुरु महाराज के मिशन को पूरा करने में मेरी सहायता की है। मैं कृष्ण से सदैव प्रार्थना करता हूं कि वे आपको शक्ति दें। मैं नगण्य हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, किंतु मैं कृष्ण से प्रार्थना करता हूं कि वे आपको शक्ति दें। प्रभुपाद को याद आया कि ऑस्ट्रेलिया में विग्रहों की स्थापना के बाद उन्होंने किस तरह सोचा था, ये मल्लेच्छ और ये यवन विग्रह का क्या करेंगे। उसके पश्चात जब वे दूसरी बार वहां गए तो उन्होंने देखा कि विग्रह की उपासना बढ़िया ढंग से कर रहे थे। उन्होंने कहा, हर चीज को अच्छी तरह करने का प्रयत्न करो और कृष्ण सहायता करेंगे। मैंने जो कुछ भी किया है इसी सिद्धांत पर किया है, जो कुछ मेरे गुरु महाराज ने मुझे सिखाया मैंने अपनी योग्यता भर उसे करने का प्रयत्न किया। श्री प्रभुपाद बोलते रहे, वे दिव्य भावावेश से भरे थे, उनके शिष्य भी उनका साथ दे रहे थे। उन्होंने कहा, मैं जब अमेरिका जाता हूं तो विशेषकर लॉस एंजलिस या न्यूयॉर्क मुझे घर जैसा लगता है। न्यूयॉर्क का नाम आने पर वे वहां के अपने प्रारंभिक दिनों को याद करने लगे। उन्होंने कहा, मैं गली के लड़के जैसा था, यहां वहां के दृश्य देखता, मैं चक्कर लगाता था, मैं न्यूयॉर्क शहर में था, किंतु एक दिन सवेरे मैंने देखा कि सभी दीवारें सफेद थीं। मैंने सोचा, ये सफेद कैसे हो गई, इन पर सफेदी किसने कर दी। मैं नीचे गया और देखा कि इतना अधिक हिमपात हो गया था। मैंने एक छाता लिया और उसी हिमपात के बीच जाकर दूध का एक डिब्बा खरीदा। उस समय मैं एक गंदी अंधेरी कोठरी में रहता था, वहां हमेशा अंधेरा रहता था, किंतु इसकी कोई चिंता नहीं थी। कठिनाई जैसी भी थी मैं उसकी परवाह नहीं करता था, मैं केवल प्रचार करना चाहता था। कभी कभी लोग मुझे छू लिया करते थे, जैसे बोबेरी के लोग, लेकिन मेरे प्रति किसी में शत्रु भाव नहीं था, हर एक मेरा प्रिय मित्रवत था, आवारा लोग भी। जब मैं अपने न्यूयॉर्क की इमारत के अंदर जाना चाहता था तो जो आवारा वहां पड़े होते थे उठ जाते थे, मुझे जाने देते थे, मेरे लिए मित्र और शत्रु में कोई भेद नहीं था। प्रभुपाद से पूछा है कि वैष्णव के गुण क्या हैं। प्रभुपाद ने बहुत सारी बातें बताई, उसमें एक गुण मैं बताता हूं। कहते, वैष्णव को सोने के लिए थोड़ा सा स्थान चाहिए, नित्य कर्म के लिए एक स्थान चाहिए, शौच जाना है, नहाना है, वगैरह वगैरह, थोड़ा सा प्रसाद चाहिए और प्रचार की जगह चाहिए। वैष्णव को ही तीन चार चीजें ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, इट डजंट नीड एनीथिंग एल्स। और अगर आप कभी वैष्णवों को देखो, मैं जब मंदिर जाता हूं और गुरु महाराज को देखता हूं, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, मैं मंगल आरती के बाद उनसे मिलने के लिए गया तो उनके पीए ने मुझसे कहा कि आप एक घंटे के बाद आइएगा, आफ्टर 1 आवर, अभी महाराज नहीं मिलेंगे। एक घंटे के बाद मैं पहुंचा तो मुझे फिर भी 25 मिनट और वेट करना पड़ा। तो मैंने देखा है कि जो महाराज थे वो वॉशरूम जा रहे थे और जो उनका पीए था वो उनका बिस्तर समेट रहा था। मंगल आरती करने के बाद महाराज रात में फ्लाइट से आए थे, 2 बजे, 4:30 बजे मंगल आरती करी, तो वो आज भी जमीन में गद्दा डाल के सोते हैं, कभी ऊपर नहीं सोते। ही स्लीप्स ऑन फ्लोर। किसी भी मंदिर में जाएं, पलंग पे नहीं सोते, बेड पे नहीं सोते, वो धरती पे सोते हैं। सारी रात जागे हैं, एक मिनट का रेस्ट नहीं किया है, सुबह 1 घंटे का रेस्ट किया है और फिर सारा दिन एक्टिविटी स्टार्ट है, होल डे ही इज एक्टिव। फिर मैं दोबारा गया हूँ शाम को 5 बजे, तो उनका नाश्ता आ रहा था, 5 बजे ब्रेकफास्ट आ रहा है, क्योंकि उनकी 8 ड्यूटीज हैं, शालिग्राम है, उनकी सेवा करते करते दोपहर हो जाती, दोपहर का लेक्चर दिया, उसके बाद जो है मिलने वाले लोग आने शुरू हो जाते हैं, लेक्चर के बाद भक्तगण जो हैं, जो डिवोटीज हैं, मिलने वाले लोग बुलाते हैं, और उसके बाद शाम को जो है 5 बजे, तब उन्होंने मुझसे कहा बैठो मेरे साथ, तो अपने साथ बैठ के उन्होंने मुझे कह रहा मेरा ब्रेकफास्ट है वो तुम्हारा डिनर है, तुम डिनर करो। तो एक कुर्सी वो बैठे हैं, बगल की कुर्सी पे मैं बैठा हूँ, उन्होंने मुझे प्रसाद खिलाया। वो डेडिकेशन वैष्णवों में, थोड़ा सा स्थान चाहिए, नित्य कर्म की व्यवस्था होनी चाहिए, प्रचार का माध्यम होना चाहिए और जीवन इसी में सफल है। तो यही प्रभुपाद से लोगों ने सीखा है। तो प्रभुपाद ने बताया, उनके एक मित्र को सुनकर दहशत हो गई थी कि बोबेरी में रहने जा रहे हैं। मित्र ने कहा, स्वामी जी आप बोबेरी स्ट्रीट में रहने जा रहे हो, ये बड़ा भयावह स्थान है। प्रभुपाद ने कहना जारी रखा, मैं अनेक खतरों से होकर निकला हूं, किंतु मैंने कभी नहीं सोचा यहाँ खतरा है, मेरी सर्वत्र यही सोच है कि ये मेरा घर है। श्री प्रभुपाद को 26 सेकंड एवेन्यू में अपने प्रचार के प्रारंभिक प्रयत्नों की छुटपुट घटनाएं याद आई। उन्होंने कहा, मैं घोर परिश्रम कर रहा था, सवेरे 7 बजे धर्मोपदेश करता था और शाम को 7 बजे भी वही करता था। मैं स्वयं प्रसाद तैयार करता था, प्रत्येक आगंतुक को उसे देता था। सत्स्वरूप, क्या तुम्हें याद है, तुम कुछ आम और अन्य फल लाते थे, तुम प्रतिदिन आते थे, वे दिन बीत गए हैं, अब उन दिनों का स्मरण करके मुझे प्रसन्नता होती है। क्या श्रेयाधीश नाम का लड़का तुम्हें याद है, वह कितनी चपातियां खाता था, उसका पेट नहीं भरता था, मैं उसे एक बार में 4 चपातियां देता और वह हर बार और अधिक मांगता। कीर्तनानंद, अशुतानंद, 75 लोग रविवार के भोज में सम्मिलित होते थे, उनके लिए प्रभुपाद ने प्रसाद बनाना 140-40 चपाती बनाते थे, गुलाब जामुन बनाते थे। आप इमेजिन करिए कि उन्होंने कितनी मेहनत करी है जिसका फल हम लोग खा रहे हैं, जिसका फल हम लोगों को मिल रहा है। मैं यहाँ की बात करता हूँ, हमारे एक मंदिर में भक्त आए थे, अभी आजकल शायद विदेश में है कहीं, उड़िया थे। जब चपाती खाते थे ना तो ऐसे नापते थे, चपातियाँ ऐसे नापते थे, इस तरह एक के ऊपर रखी हैं, जब यहाँ तक आ जाए तो उसके बाद बंद कर दीजिएगा। बड़े मंदिर में चले गए, वहाँ मेरे से मुलाकात हुई सवेरे, तो कह लगे मैं ऐसा है, सवेरे आता हूँ ना मंगल आरती में, तो छोटी बाल्टी होती, इतनी बाल्टी, बड़ी बाल्टी की बात नहीं कर रहा मैं, छोटी बाल्टी की बात कर रहा हूँ। तो रात को जो है, जो उड़िया लोग हैं, इनको आप ध्यान से देखिएगा, ये रात के चावलों में पानी डाल देते हैं, वो पानी से भीगे रहते हैं, उसमें नमक डालते हैं, लाल मिर्च डालते हैं, क्योंकि चावल जब पानी में भीगता है तो उसमें रात में फर्मेंटेशन होती है, तो तो बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस हो जाता। तो सवेरे आरती में मृदंग बजाने से पहले आधी बाल्टी चावल खा के आते थे। और मृदंग बजाने के बाद, सवेरे की आरती खत्म करने के बाद जब जाते थे, जप किया, उसके बाद भागवतम आने से पहले बाकी आधी बाल्टी खा है। मीन्स भक्त कैसी कैसी लीलाएं दिखाते हैं, भक्त कैसे कैसे उनका गुजारा है, कैसे कैसे उनकी हेल्थ मेंटेन होती है। मैं बेलगाम बेटे के पास जाता था, वहां एक भक्त था, वो 4 घंटे नॉन स्टॉप मृदंग बजा सकता था। उंगलियों में जख्म हो जाते हैं, प्लास्टर लगाना पड़ता है, पर 4 आवर्स जख्म हो जाते हैं और पट्टियां लग जाती हैं यहां पे। तो उनका गांव जो है वो बेलगाम से 26 किलोमीटर दूर था, खानापुर। तो मुझे भक्ति रसामृत महाराज, उन दिनों देवामृत प्रभु हुआ करते थे, मुझे कहने लगे आज शाम तुम ना खानापुर में लेक्चर दे के आओ, तो हिंदी भाषी हो वहां लेक्चर दे के आओ। और नेक्स्ट डे सवेरे राधानाथ महाराज की यात्रा थी, लोगों ने वृंदावन आना था तो सवेरे वहां से चलना था। एक छोटा सा संत ज्ञानेश्वर का मंदिर था, बहुत छोटा सा, जिसमें कि समझ लीजिए इस पिलर से लेके इस पिलर तक और वो प्रभुपाद से लेके यहाँ तक, इतना बड़ा उसका हॉल था। तो मैंने कहा अच्छा भाई वो गाड़ी आएगी, कार मुझे लेके जाएगी वहाँ पे। तो शाम को एक चैंपियन नाम से एक मद्रास की मोटरसाइकिल थी, छोटी सी चैंपियन, वो आ गई। वहाँ ठंड रहती है, गर्मी में भी ठंड रहती है, मुझसे साहब बैठ जाइए इसके ऊपर। मैं मोटरसाइकिल पे बैठा नहीं था बहुत साल से, उन्होंने मुझे बिठा लिया। वो खेतों में से जंगलों में से होते होते 26 किलोमीटर मुझे वहां ले गए। मैंने वहां जाके देखा 3 बच्चे छोटे छोटे 10-11 साल के, और एक बुढ़िया माता, वो बैठे हरे कृष्ण महामंत्र का भजन कर रहे थे। अब मैं पहुंच गया, टाइम हो गया था, तो मैंने कहा भाई ये तो जो है यहाँ पे तो 4 लोगों में कथा करनी है, 4 ही लोग हैं। तो फिर एक लड़की आई 15-16 साल की, ओहो दिल्ली वाले प्रभु जी आए। वो उसकी बहन थी जो 4 घंटे मृदंग बजाता था, उसकी बहन थी। दिल्ली वाले प्रभु जी आए, वो लड़की गांव में फिरकी की तरह घूमी और 15 मिनट के अंदर 100 लोग उस हॉल में थे, 100 people। ने कहां से लोग ऐसे चले, कुछ 4 इधर से चले आ रहे हैं, 6 इधर से चले आ रहे हैं, 8 इधर से चले आ रहे हैं, 10 इधर से चले आ रहे हैं, चलते चलते 15 मिनट में 100 लोग हो गए। हमने कथा करी, उसके बाद बोले साहब प्रसाद पाके जाइएगा। हमने कहा लाओ भाई पनीर, दाल, चावल, पुलाव, पूरी, खीर, हलवा, समथिंग, मतलब बढ़िया। दिल्ली वाले तो ऐसे ही प्रसाद खाने के आदी हैं। हमको तो ऐसे ही आदतें डाल रखी दिल्ली के मंदिर वालों ने हर जगह। तो वो आए, एक व्यक्ति आया, उसने इस किताब के बराबर अखबार का टुकड़ा मेरे को पकड़ा दिया मेरे हाथ पे। दूसरा व्यक्ति आया बाल्टी लेके, उसमें मुरी थी, मुरी मुरमुरे जो होते हैं भुने हुए चावल, नमक और लाल मिर्च लगी हुई, वो मेरी उसमें डाल दिया। तीसरा व्यक्ति आया, इतना सा केले का टुकड़ा दे दिया। और चौथा व्यक्ति आया, हाथ जोड़ के बोला प्रभु जी प्रसाद पाओ। अरे भैया वो हलवे, वो पनीर, वो सब्जी, वो चावल, वो दाल, वो थाली कहाँ गई, कहीं नहीं है। हमने चुपचाप प्रसाद खाया। हम वहां से कहा चलो भैया बिठाओ फुटपिटिया पे चलें, अब फिर 26 किलोमीटर रात में 9:30 बजे जाना है। तो वो लड़की आ गई, हे प्रभु जी मेरे घर तो चलना है आपको। वो तो भैया का फोन आया है कि प्रभु जी को घर जरूर लेके जाना, अम्मा से जरूर मिलवाना, अम्मा तो यहाँ आ नहीं पाई, आपको अम्मा से मिलने जाना। मैंने कहा चलिए साहब अम्मा से भी मिल लेते। तो पैदल हमको गलियों में से घुमाती हुई वहां गाय बंधी हुई है, गोबर पड़ा हुआ है, बिल्कुल विलेज, टोटल विलेज एडवाइज, हमको अपने घर ले गई। पूरा घर गोबर से लिपा हुआ, पूरा घर, कहीं ईंट नहीं दिखाई दे रही। सरकंडे होते हैं, उनको खड़ा किया, दोनों तरफ मिट्टी लगाई, ऊपर गोबर से लीप दिया, खिड़की बन गई, दरवाजा बन गया, उसी से चुप चल रहा। अंदर में गया, एक अलमारी बनी जिसमें एक शेल्फ है, उस शेल्फ पे बहुत ही सुंदर गौर नेताई विराजमान, सेवा हो रही है, गौर नेताई की सेवा हो रही है, माता ही सेवा करती है। फर्श भी गोबर से लिपा हुआ है, उस जो आल्टर है वो भी गोबर से लिपा हुआ है, उसके आल्टर की दीवारें भी गोबर से लिपी हुई हैं, उसकी शेल्फ भी गोबर से लिपी हुई है। माता जी जो हैं, वहाँ छोटे छोटे गिलास होते हैं इतने इतने स्टील के, उसमें घर की गाय का दूध ले आई और दो घर के गुड़ के बने लड्डू ले आई इतने इतने साइज के, रोज आज दोपहर भोग लगाया था प्रसाद का। वो जो भाव है, वो जो प्रेम है, जो सिखाया है प्रभुपाद ने कि किस तरह से भगवान की सेवा करनी है, कैसे सेवा करनी है, वो यहां नहीं विदेश में भी है। बुक डिस्ट्रीब्यूटर ब्राजील में गए, एक घर में नॉक किया, एक बूढ़ी माता जी निकली, तिलक लगाया हुआ। बोले भाई ये जो ब्राजील में गांव में ये माता तिलक लगा के निकली है, ये क्या स्टोरी है। माता ने इनवाइट किया, भक्त लोग अंदर गए, गौर नेताई की सेवा हो रही है, वो माता भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करती है। कितना कितना जो है, जितनी चीजें हमको प्रभुपाद ने सिखाई हैं और खुद करके दिखाई, तो आज हमको जो है एक प्रण लेना चाहिए। अभी तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन मंथ चल रहा है जिसका एक बहुत बड़ा महत्व है। महत्व इसलिए है कि एक तो भगवान की सेवा हो रही है, प्रचार का कार्य हो रहा है, बुक जहां भी जाती है टाइम बॉम्ब का काम करती है, टाइम बॉम्ब का काम करती है, फटती है कभी ना कभी, बॉम्ब फटता है ना, ऐसे किताब भी कभी ना कभी खुलती है, फटने का मतलब है खुलती है, लोग जाके अलमारी में रख देते हैं, गुस्सा करते हैं, नहीं लेंगे, ले जाते हैं अलमारी में रख देते हैं, समय आता है उसको यूज करते हैं और फिर उनके जीवन में बदलाव आता। तो हमें प्रण लेना चाहिए, अभी मैराथन चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए और प्रभुपाद के लिखे ग्रंथ जो हैं घर घर पहुंचेंगे तो कुछ ना कुछ तो लाभ उस घर वालों को होगा। मुझे अच्छे तरीके से याद है, एक मेल आया था मेरे पास, जर्मन फिल्म स्टार को एक छोटी सी बालिका 7-8 साल 9 साल की थी, वो भगवद गीता दे रही है, नहीं चाहिए फिर दी, नहीं चाहिए फिर दी, नहीं चाहिए फिर दी, नहीं चाहिए, उसने उठा के सब फेंक दी, फिल्म स्टार ने उठा के स्टेशन स्टेशन की बात है फेंक दी। लड़की ने फिर उठाई, कहते आई डोंट वॉन्ट मनी, प्लीज टेक इट, दिस विल हेल्प यू वेन यू आर इन टेंशन। कहता नहीं मान रही है, पैसा भी नहीं मांग रही है, चलो मैं रख लेता हूं। 14 साल के बाद उसकी लाइफ में कुछ ऐसी टेंशन आई, उसे उस लड़की की बात याद आई, उसने भगवद गीता पढ़ी एंड 2 days and 2 nights उसने भगवद गीता को थॉरली पढ़ डाला। पढ़ने के बाद फिर उसने वहां पे इस्कॉन टेम्पल ढूंढा जर्मनी में, इस्कॉन टेम्पल गया, वहां उसे वो लड़की दिखाई दी, नाउ शी वॉज अबाउट 21-22। उस व्यक्ति ने उस लड़की को अपोलोजाइज किया, उसके चरणों में अपना सर रख दिया, आई एम सो सॉरी आई मिसबिहेव्ड, यू वर राइट, मैं गलत था, एंड ग्रेजुअली दैट आर्टिस्ट बिकेम ए फुल टाइम डिवोटी, फुल टाइम डिवोटी। बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो आज इतना ही है, शेष फिर हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।